भद्रेशो नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण स्कंद 5 अध्याय 6 और श्लोक संख्या 5। मेरे पीछे दोहराइए, कामो मनो मदो लोभा शोक मोह भयादया कर्म बंधश्च यन्मूलः स्वीकुर्यात् को न तद्बुध। कामो मन्योर्मदो लोभा शोक मोह भयादया कर्म बंधश्च यन्मूलः स्वीकुर्यात् को नु तद्बुध। कामो मन्योर्मदो लोभा शोक मोह भयादया कर्म बंधश्च यन्मूलः स्वीकुर्यात् को नु तद्बुध। कामा विषया मनियु क्रोध मदहा घमंड लोभा लालच शोक पश्चाताप मोह मोह भय डर आदाय ये सभी कर्म बंधा सकाम कर्म के लिए बंधन स्वरूप च तथा यत मूला जिसका कारण स्वीकुर्यात् स्वीकार करेगा कौन नो निसंदेह तत् वह मन बुद्धा यदि बुद्धिमान है। अनुवाद और तात्पर्य शिला प्रभुपाद के द्वारा। शिला प्रभुपाद की। काम क्रोध मद लोभ पश्चाताप मोह तथा भय का मूल कारण तो मन ही है। ये सारे मिलकर कर्म बंधन की रचना करते हैं। भला कौन बुद्धिमान मन पर विश्वास कर सकेगा। मेरे साथ दोहराइए, काम काम क्रोध मद लोभ पश्चाताप मोह तथा भय का मूल कारण तो मन ही है। ये सारे मिलकर कर्म बंधन की रचना करते हैं। भला कौन बुद्धिमान मन पर विश्वास कर सकेगा। तात्पर्य, भौतिक बंधन का मूल कारण मन है। इसका पीछा करने वाले अनेक शत्रु हैं, यथा काम क्रोध मद लोभ शोक मोह तथा भय। मन को वश में करने का सरल उपाय यह है कि उसे कृष्णा भावनामृत में संलग्न रखा जाए। सवे मना कृष्णा पदारविंदयो। चूंकि मन का पीछा करने वाले तत्व भाव बंधन लाने वाले हैं, अतः हमें मन पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। ओम अज्ञान तिम्रन्धसे ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति सुपदान्तिकं। वन्देऽहं श्री गुरो श्री उत्पत्कमलं श्री गुरुन् वैष्णवाक्षच सीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथवितं तं सजीवं सावदेतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्विताक्ष। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। श्रील प्रभुपाद की जय। समस्त गुरु परंपरा की जय। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ ऐ छे गोसाई करी चरण वंदन। जहाँ हित विघ्न नाश अभीष्ट पूरण। षड गोस्वामी प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय। नामाचार्य सदा ठाकुर की जय। पंचतत्वात्मकम कृष्णम भक्त रूप स्वरूपकम भक्त अवतारम भक्ताख्यम नमामि भक्तशक्तिकम। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम पदाय कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौतशे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रमामि हरि प्रिये। ओम नीलांचला निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपा तदहं वंदे परमानंद माधवं श्री गुरु तीनतारणम्। वांछा कल्तरु भिक्ष कृपा सिंधुभेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्या प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। निताई गौर प्रेमानंदे। तो आप सभी वैष्णवजन वैष्णवी माता जी का बहुत बहुत स्वागत है श्रीमद् भागवतम कक्षा में। नित्यम भागवत सेवया आप यहाँ आते हैं प्रतिदिन, और आज कुछ भक्त लोग बाहर से भी आए होंगे। आज विशेष दिवस है, आज 25 दिसंबर है, क्रिसमस, जीसस क्राइस्ट का अपीयरेंस। आज के दिन पूरे विश्व में मनाया जाता है। तो उस करके भी भक्त लोगों का आकर्षण जो है वो वृंदावन की तरफ हो आता है, क्योंकि जीसस क्राइस्ट ने कहा आई एम द सन ऑफ द गॉड, मैं भगवान का पुत्र हूँ। और भगवान भी कहते हैं पितामह जगतो माता धाता पितामह, कि मैं तुम सबका पिता हूँ। लेकिन हम तो नहीं मानते, हम तो खुद ही पिता बनना चाहते, हमारा पिता कौन हो सकता। लेकिन जीसस क्राइस्ट ने कहा आई एम द सन ऑफ द गॉड, मैं भगवान, मैं परम पिता का मैं पुत्र हूं। तो जब हम अपने आप को पुत्र के रूप में स्वीकार करते हैं, जब भगवान को पिता के रूप में स्वीकार करते हैं, तो हमारे सारे कष्टों का निवारण हो जाता है। समस्याएं तब तक है जब तक हम स्वयं को पिता मानते हैं, स्वयं को भगवान मानते हैं, तब तक ही समस्याएं ही समस्याएं। और इस सब समस्याओं में जो मुख्य जो एक रोल जो अदा करता है वो कौन करता है, हमारा मन। चंचलम ही मना कृष्णा प्रमाति बलवद्रणम। तो ये जो चंचल मन है जिसको भगवान ने भी कहा असंशयम महाभाव, के इसमें कोई संशय नहीं है कि मन जो है बड़ा चंचल है। और आज का जो श्लोक है वो मन के ऊपर ही चला आ रहा है। ये जो बड़ा ही विकट, जो बड़ा ही एक वास्ट सब्जेक्ट है ये, है ना, जिसमें कहीं मन को शत्रु बताया गया है, कहीं मन को बताया गया है कि इससे बड़ा चौकस रहना चाहिए। लेकिन भगवान कहते हैं कि उदरेत आत्मना आत्मनाम न आत्मनाम अवसादयेत। हे अर्जुन, अपने मन की सहायता से अपना उद्धार करो, अपने मन की सहायता से अपना उद्धार करो और अपने आप को नीचे न गिरने दो। मन हमारा मित्र भी बन सकता है, मन हमारा शत्रु तो है ही, लेकिन ये मित्र भी बन सकता है। तो कैसे मित्र बनाए इसको, क्योंकि मन हमारे नियंत्रण में है या हम मन के नियंत्रण में है, एक बात सोचने का विषय है। मुख्य रूप से हमें इस बात को, है ना, इस बात का चिंतन करना चाहिए कि हम मन के नियंत्रण में हैं या मन हमारे नियंत्रण में है। तो आप बताइए कुछ अपना अपना कि आप के नियंत्रण में मन आ चुका है या आप मन के नियंत्रण में हैं, बताइए कुछ हैं। प्रभु जी कह रहे हैं कि मैं मन के नियंत्रण में हूं। तो आप सभी का यही विचार है, आप मन के नियंत्रण में हैं जी। रस्सा कस्सी चलती है, कभी आप मन के नियंत्रण में आ जाते हैं, कभी मन को आप अपने नियंत्रण में ले आते हैं। बहुत अच्छी बात है, रस्सा कस्सी चलती ही रहनी चाहिए, लेकिन आपको मन से अधिक बलवान होना पड़ेगा। मन से अधिक बलवान किसको होना पड़ेगा, मन से अधिक बलवान बुद्धि को, बुद्धि से अधिक बलवान आत्मा को, तभी रस्सा कस्सी में अंततः आपकी विजय होगी। तो भगवान ने मन के ऊपर बहुत विस्तृत चर्चा करी है छठे अध्याय में, और बताया है सातवें अध्याय का प्रथम श्लोक जो है मई आसक्त मना पार्था युंजन योगम युंजन मद आश्रया। क्या कहा भगवान ने, हे प्रथापुत्र अब सुनो कि तुम किस तरह मेरी भावना से पूर्ण होकर और मन को मुझ में आसक्त करके योग अभ्यास करते हुए मुझे पूर्णतः संशय रहित होकर के जान सकते हो। मैं आसक्त मना पार्थ, मैं मन को आसक्त करो, कहां मुझ में आसक्त करो। फिर भगवान बड़े दो श्लोक बड़े मुख्य रूप से जो भगवद गीता में आए हैं, एक ही श्लोक को भगवान ने नौवें अध्याय का जो अंतिम श्लोक है, मन मना भव मद भक्तो मद्यादि माम नमस्करो माम यसि युक्तो एवनम आत्मनम मत्परायण, अपने मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो और मेरी ही पूजा करो, इस प्रकार मुझ में पूर्णतः तल्लीन होकर तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त करोगे। और भगवान इसी बात को फिर 18वें अध्याय में भी कहते हैं, मन मनाभव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्करो माम एवश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसि, मैं आपको वचन देता हूं, मैं आपको वचन देता हूं कि आप निश्चित रूप से मुझको प्राप्त करोगे। क्या करना है? मन मनाभव मद भक्तो, मन मुझ में लगा दो, या मन भगवान कहते हैं मेरे को ही दे दो, अपना मन मुझको दे दो। क्यों मांगते हैं भगवान मन हमसे? इसीलिए कि हम मन का दुरुपयोग कर सकते हैं। बच्चे के पास अगर कुछ कीमती वस्तु हो और ये माता पिता को डर लगे कि ये कीमती वस्तु कहीं ये गुम कर देगा, खो देगा, तो माता पिता क्या कहते हैं, बेटा ये तुम मेरे को दे दो, मैं तुम्हारा संभाल के रखूंगी, मैं संभाल के रखूंगी, तुम्हारे इस वस्तु का कहीं कुछ नुकसान नहीं होगा, तुम इसे मेरे पास रख दो। तो माता पिता जो है उसको समझा बुझा करके उस वस्तु को बच्चे से ले लेते हैं। तो भगवान भी हमसे ये अपेक्षा करते हैं कि जो मन है ये तुम मेरे पास जमा करा दो लॉकर में, इसको लॉकर में मेरे पास जमा कर दोगे तो क्या करोगे, मेरे इर्द गिर्द चक्कर ही काटते रहोगे कि मेरा मन कहाँ है, मेरे कीमती वस्तु, मेरा मन वो तो इस श्याम सुंदर ने ले लिया, इस राधा श्याम सुंदर ने ले लिया। तो इस बात को जब हम स्वीकार कर लें कि भाई ये जो मन है, जो शास्त्र बता रहे हैं कि ये क्या है, आज का जो श्लोक है, कामो मन्युर मदो लोभा शोक मोह भया दया कर्म बंधश्च यन्मूला स्वीकुर्यात को न तद्बुद्धा, काम क्रोध मद लोभ पश्चाताप मोह तथा भय, कितनी हो गई गिनिए, काम एक, क्रोध दो, मद तीन, लोभ चार, पश्चाताप पांच, मोह छह और भय सात। इस सात यहां पर जो है भगवान ऋषभदेव बता रहे हैं कि काम क्रोध लोभ मद लोभ पश्चाताप मोह तथा भय का मूल कारण तो मन ही है, ये सारे मिलकर कर्म बंधन की रचना करते हैं, भला कौन बुद्धिमान मनुष्य मन पर विश्वास कर सकेगा। तो अब इसमें सबसे मुख्य बात जो हमारे को समझने की है, देखिए मन हमारा कितना बड़ा भी शत्रु हो, मन हमारे साथ कैसा भी व्यवहार करे, मन हमारे को अभी तक इस भव सागर में धकेलता ही आया है, अभी तक हम मन पे विजय प्राप्त नहीं कर पाए। अगर हमने मन पे विजय प्राप्त कर ली होती तो आज हमको ये पंच तत्व भौतिक शरीर प्राप्त न हुआ होता। तो मन हमारा कितना बड़ा शत्रु है, लेकिन मन से हम अपने आप को अलग नहीं कर सकते। मन से अपने आप को अलग कर सकते हैं? तो हमारा शत्रु है हमसे दूर रहे, नहीं कर सकते। क्या कर सकते हैं? नंबर वन, मन को भगवान के फिक्स डिपॉजिट में डाल दिया जाए, या भगवान आप रख लो। और फिक्स डिपॉजिट में कैसे दिया जाएगा, उसका क्या, किस तरीके से उस कार्य को किया जाएगा, कैसे फिक्स डिपॉजिट में दे सकते हैं भगवान के, अपने मन को भगवान के पास कैसे जमा कर सकते हैं। तो इस बात को सोचने के लिए सबसे पहले हमें ये आत्मचिंतन करना पड़ेगा कि दो तरह के संसार में जीव हैं। आत्मा रमणम, पहले श्लोक में इसमें जो बताया गया आत्मा रमणम, जो आत्मा में रमण करने वाले हैं, और दूसरे अपश्यताम, न अपश्यता, अपश्यताम आत्म तत्व, जो आत्म तत्व को नहीं देखते, यानी जो आत्मा को स्वीकार ही नहीं करते। और एक ऐसे भक्त हैं जो आत्मा रमण, आत्मा में ही रमण करते हैं। भगवान आए श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय, और हम सबको गधा बता के चले गए। क्या हम सब क्या हैं? गधे हैं। पिता बता सकते हैं, पिता कह सकते हैं, तुम गधे गधे हो, गधे जैसा कार्य करते हो। तो हमें अच्छा लगना चाहिए बुरा लगना चाहिए? अच्छा लगना चाहिए, क्योंकि भगवान हमारे को हमारी स्थिति बता रहे हैं। तो भगवान ने आकर के बताया, क्या बताया भगवान ने बताया, यस्मात् यस्यात्म बुद्धि कुणपे त्रुधातु के स्वधि कलत्रादिषु भौम्य इज्जति, यत् तीर्थ बुद्धि सलीले न कर्चित जनेषु अभिज्ञेषु स एव गोखरा। भगवान ने कहा कि जो व्यक्ति कफ पित्त और वायु से बने हुए इस शरीर को, इस शव को, है ना, कुणपे, कुणपे मतलब शव, ये निष्क्रिय शरीर, ये किससे बना हुआ है? तीन धातुओं से, कफ पित्त वायु से बना हुआ ये शव, त्रिधातु के स्वधि कलात्रादिषु भौम्य इज्जति। भगवान ने कहा कि जो व्यक्ति कफ पित्त तथा वायु से बने निष्क्रिय शरीर को स्वयं मान बैठता है, मैं ही ये शरीर हूं, मैं ही ये मन हूं, तो क्या होता है? और आगे भगवान कहते हैं, जो अपनी पत्नी तथा अपने परिवार को स्थायी रूप से अपना मानता है कि ये मेरी पत्नी, ये मेरे परिवार, ये स्थायी रूप से हमेशा मेरे साथ रहेंगे, कोई यदि ऐसा मानता है, और जो जन्मभूमि को पूज्य मानता है, और जो तीर्थ स्थल को केवल जल का स्थान मानता है। भगवान ये चार बातें बता रहे हैं, अपने आप को इस शरीर मानना या मन मानना, अपने पत्नी पुत्र आदियों परिवार को ये मानना कि ये स्थाई हैं, हमेशा मेरे साथ रहेंगे, और जो जन्मभूमि जहां जन्म हुआ है उसको पूज्य मानता है, केवल उसी की पूजा करता है, और जो तीर्थ स्थानों में जाकर के केवल जल को ही तीर्थ स्थान मानता है, लेकिन जो आध्यात्मिक ज्ञान में उन्नत व्यक्तियों के साथ अपना कुछ संबंध नहीं रखता, जो भक्त लोग हैं जिन्होंने भगवान को समझा है, जिन्होंने भगवान के तत्व को समझा है, उनके साथ कोई संबंध नहीं रखता, और उनसे कुछ अपनेपन का कुछ अनुभव नहीं करता, और उनके दर्शन तक नहीं करता, भक्तों के दर्शन नहीं करता, तो भगवान क्या कहते हैं, ऐसा व्यक्ति स एव गोखरा, ऐसा व्यक्ति गाय या गधे के समान बताया गया है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, कि हम ये शरीर नहीं है। इस बात को जो भक्ति का जो पहली सीढ़ी है, भक्ति जब हम शुरू करते हैं, जब हम भक्तों का संग करते हैं, तो सबसे पहले हमें क्या बताया जाता है कि ये अंडरस्टैंडिंग कि मैं न तो ये शरीर हूं और न मैं मन हूं, इस बात को हमें अभ्यास के द्वारा अपने आप को समझाना है कि मैं कौन हूं। फिर मैं कौन हूं? मैं तो शरीर ही मानता रहा हूं अपने आप को, मैं तो मन ही मानता रहा हूं अपने आप को। तो सनातन गोस्वामी जब महाप्रभु के पास गए तो उन्होंने यही प्रश्न किया, क्या आपनार हिता अहिता किछु न जानी, ग्राम्य व्यवहारे पंडिता ताई सत्य माने। मैं नहीं जानता कि मेरे लिए क्या लाभप्रद है और मेरे लिए क्या हानिप्रद है। कौन कह रहे हैं? सनातन गोस्वामी। छठ गोस्वामियों में जो सनातन गोस्वामी हैं, वो क्या कह रहे हैं महाप्रभु को कि मैं नहीं जानता मेरे लिए क्या लाभप्रद है और मेरे लिए क्या हानिप्रद है, फिर भी सामान्य व्यवहार में लोग मुझे विद्वान समझते हैं। लोग मुझे क्या समझते हैं? विद्वान, पंडित मानते हैं, और मैं भी अपने आप को ऐसा ही मानने लगा हूं। जब लोग कहते हैं अजी आप तो बड़े विद्वान हैं, हां मैं तो विद्वान हूं, अब तो विद्वान हो गया हूं। तो ये सनातन गोस्वामी पाद जो हैं महाप्रभु से प्रश्न कर रहे हैं, के आमी के में आमाय जारे तापत्रय, कि मैं कौन हूं और ये तीन ताप मुझको क्यों दुख दे रहे हैं। तो ये प्रश्न यह नहीं जानी के मैंने हित आए, अगर मैं ये नहीं जानता कि मैं कौन हूं, ये तीन ताप मुझको क्यों दुख दे रहे हैं, यह न जानी के मैंने हित आए, तो मेरा किस प्रकार से हित है, मैं अपना किस प्रकार से हित कर रहा हूं। तो इस प्रकार से जब हम पहली सीढ़ी पे बैठते हैं, पहली सीढ़ी पे चढ़ते हैं, तो इस बात का हमारे को सिखाया जाता है। भगवान ने भगवत गीता का जो अध्याय दूसरे अध्याय में सबसे पहले क्या बताया है कि आप ये शरीर नहीं हो। यहीं से हमारी भक्ति का जो है श्री गणेश शुरू होता है, पर न शरीर है न मन है। लेकिन होता क्या है, मैं अपने आप को शरीर मानने लगता हूं। कहीं जा रहे हैं, एक भिखारी मिला, भिखारी ने कुछ दे दीजिए, कुछ हमको दे दीजिए, कुछ आप बहुत बड़े राजा बनेंगे, आप बहुत बड़े धनवान बनेंगे, आपका बहुत ऐश्वर्य बढ़ेगा, आप कृपा करके मुझे दे दीजिए। अच्छा चलो ये लो, मैं बड़ा बन सकता हूं, मैं धनवान बन सकता हूं। तो ये जो मन हमारा साथ ये जो कार्य करता है, ये जो भोग की जो वासना, ये जो भोग भोगने की वासना मन में बसी हुई है, वो कहां जा रही है? भगवान तो कहते हैं ब्रह्म भूत प्रसन्न आत्मा न शोचती न कांक्षती। तो जब तक हम मन को अपने से अलग नहीं करेंगे और मन के ऊपर नियंत्रण नहीं करेंगे, तब तक ये मन हमारे को दुख देता रहेगा। मन के तीन कार्य हैं, है ना। मन क्या करता है? मन चिंतन करता है, चिंतन करता रहेगा, थिंकिंग फीलिंग विलिंग, चिंतन करता है, अनुभव करता है और इच्छा करता है, कुछ पाने की इच्छा मन करता रहता है। मन संकल्प और विकल्प करता है, मन हमेशा द्वंद में लगा रहता है, मन 24 घंटे युद्ध करता है, ये करो या ना करो, यहां जाओ या ना जाओ, ये खाओ, मन द्वंद करता है, संकल्प और विकल्प करता है। मन इसी में उलझा रहता है और इस मन को क्या करना है, मन इच्छा रहित नहीं हो सकता। मैं जीवात्मा हूं, मैं निष्क्रिय नहीं हूं, मैं जड़ नहीं हूं, मैं मन से अपने आप को अलग नहीं कर सकता, मैं मन को इच्छाएं करने से रोक नहीं सकता। मन तो इच्छा करेगा, मन को आप रोक नहीं सकते। मन के साथ हमारी ये इंद्रियां लगी हुई हैं, इंद्रियों के साथ पीछे पीछे मन है, इंद्रियों का राजा मन है, हर इंद्री के साथ मन लगा रहता है। कई बार आप किसी वस्तु को देख रहे हैं और उसके साथ अगर मन लगा हुआ है तभी आप उसको देख पाएंगे। आपकी आंखें चक्षु खुली हुई हैं, आपके चक्षु खुले हुए हैं, आप देख करके भी नहीं देखते यदि मन साथ में नहीं है, आप सुनकर के भी नहीं सुनते यदि मन साथ में नहीं है। आप हो सकता है यहां बैठे हो, अगर मन आपका यहां नहीं है तो आप नहीं सुन सकते। कई बार हम खा करके भी हमको पता नहीं लगता कि हमने क्या खाया है, अगर हमारा मन कहीं और विचलित है। खा तो लेते हैं लेकिन पता नहीं लगता क्या खाया, कब खाया, अच्छा ये खाया था, अच्छा क्यों, कि खाया तो फिर मन कहां था। तो मन का तो बड़ा अहम भूमिका है, इसीलिए भगवान बड़े मुख्य है, जो हम भक्तों के साथ चर्चा करते हैं, यम यम व्यापी स्मरण भावम तजन्ते अंते कलेवर, कि मन अगर हमारा भगवान के साथ नहीं जोड़ा है तो क्या होगा, फिर हमारा ये मन बहुत बड़ा शत्रु बनने जा रहा है, बहुत बड़ा शत्रु बनने जा रहा है। तो मन को हम इच्छाओं से रहित नहीं कर सकते, मन से अपने आप को अलग नहीं कर सकते। तो गोविंद हे गोपाल, अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं, क्या करूं। इच्छाओं से रहित नहीं कर सकते लेकिन इच्छाओं को बदल सकते हैं, बस यही करना होगा, इच्छाओं को बदलना होगा, अपनी इच्छाओं को बदलना होगा। जो भौतिक भोग की वासना मन में है, ये जो मन है ये भौतिक है, ये जड़ है, और हम अपने प्रयास से इसमें चेतन जो भगवान है उसको हम इस जड़ वस्तु में कैसे बिठा सकते हैं, सोचने की बात है। एक निष्कृष्ट मन एक निष्कृष्ट वस्तु है और भगवान जो हैं वो सर्वोपरि हैं। हम उस भगवान से अपेक्षा करते हैं कि हे भगवान आप हमारे इस निष्कृष्ट स्थान में आकर के बैठ जाओ, यानी आप अपना गोलोक धाम छोड़ करके इस जड़ वस्तु जो निकृष्ट है, जो भोगी है, जो रोगी है, आप यहां आकर के बैठ जाओ। बैठेगा भगवान, क्या आवश्यकता पड़ेगी भगवान। मन तो कोई आध्यात्मिक वस्तु नहीं है, मन आध्यात्मिक वस्तु नहीं है, और हमारा प्रयास क्या रहता है कि भगवान आकर के हमारे मन में बैठ जाए। तो मन को क्या करना होगा, मन को आध्यात्मिक बनाना होगा। मन को आध्यात्मिक बनाया जा सकता है क्या, किसी जड़ वस्तु को आध्यात्मिक बनाया जा सकता है क्या, लोहे को सोना बनाया जा सकता है। मन को आध्यात्मिक बनाने का मतलब है कि लोहे को सोना बनाना। तो जब हम जैसे लोहे की छड़ी को अग्नि में डाल के रखें तो उसके अंदर कौन से गुण आ जाते हैं, अग्नि के गुण आ जाते हैं कि नहीं आ जाते हैं? अगर कुछ समय तक उस लोहे की छड़ी को हम अग्नि में रखेंगे तो छड़ी कैसी हो जाएगी? आग का ही कार्य करेगी, आग ही बन जाएगी, अग्नि की तरह ही कार्य करेगी। और जैसे ही कुछ समय बाद आप उस छड़ी को अगर बाहर निकाल के रखते हैं तो वो अपना स्वरूप वापस धारण कर लेगी। तो जब तक हम इस मन को भगवान के नाम के साथ जोड़े रखेंगे तब तक ये मन हमारा आध्यात्मिक बना रहेगा। जैसे ही हम नाम को छोड़ देंगे, जैसे ही हम भगवान के गुणों को, भगवान की कथा को, भगवान के संग को, अपने आप को अलग कर देंगे तो यह फिर वही हमारा जो वास्तविक स्वभाव है उसको धारण कर लेगा। यानी ये 24 घंटे का प्रयास है, ये एक दिन का प्रयास नहीं है। जब तक हम इस भौतिक जगत में हैं, जब तक हम इस भौतिक जगत में रह रहे हैं, उस वक्त हमें अपने इस मन रूपी लोहे की छड़ को अग्नि में डाल के रखना ही होगा। अन्यथा एक दिन भी आप इसको बाहर कर देंगे तो फिर उसके अपने गुण प्रकट हो जाएंगे, अपने गुण प्रकट हो जाएंगे, है ना। ये आसान कार्य नहीं है कि मन को, भौतिक वस्तु को अभौतिक बना के रखना। अगर हमें इस बात को स्वीकार करना है कि ये जो संसार है ये दुखालयम है और मन हमारा शत्रु है, हमें मन से कोई बहुत ज्यादा मित्रता नहीं करनी है और उसके ऊपर हमें चौकसी रखनी है, सावधानी रखनी है, तो इस प्रकार से हमें हर वक्त हर पल ये सोचना होगा कि मन जो ये संकल्प कर रहा है इस बात को मैं स्वीकार करूं या ना करूं। क्या ये मेरी भक्ति में सहायक है या मेरी भक्ति में बाधक है? ये कार्य मेरी भक्ति में सहायक है, ये कार्य मेरी भक्ति में बाधक है, ये मुझको करना है, ये मुझको नहीं करना। तो काम और प्रेम, जब मन काम ऐसा क्रोध ऐसा रजोगुण समुद्भवा महाशनो महापाप मा वेदयनम वेरिणम, तो ये जो काम का जो निवास स्थान है, ये जो काम है, ये काम कहां से आया, ये मन में इसने जगह बना ली, ये काम कहां से आया, ये रजोगुण से उत्पन्न होता है। ये भोग भोगने की वासनाएं जब मैं इस संसार में आता हूं तो ये जब मेरे साथ आती हैं, इसको प्योरिफिकेशन, इसको शुद्धिकरण करने के लिए चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापरम शेके रव चंद्रिका वितरणम विद्यान। जब मेरी कामनाएं भगवान की कामनाओं से मेल खाएंगी, भगवान की जो कामना है, जब मेरी कामना भगवान की कामना से मेल खाएगी, फिर क्या होगा? कामो मन्युर मदो लोभा। काम क्रोध क्यों आता है? मन्युर मतलब जब मेरी कामनाएं पूरी नहीं होती तब क्रोध आता है। क्रोध कब आएगा? जब मेरी कामनाएं पूरी नहीं होगी, जब मैंने अपनी कामनाओं को भगवान की कामनाओं को समर्पण कर दिया। हे गोविंद, अब जो तेरी इच्छा है वही मेरी इच्छा है, मेरी अपनी कोई अपनी स्वयं की इच्छा नहीं है। तो जब हम ये अभ्यास करने लगते हैं, मेरी अपनी, मैं अपनी इच्छा, मैं अपना भोग, मैं अहम ममेति, इस बात को जब हम छोड़ के हे गोविंद तू ही तू, हे कृष्ण तू ही तू, तेरी इच्छा में मेरी इच्छा है, तेरी इच्छा में मेरी इच्छा है, मैंने जब तक अपनी इच्छाओं को पूरा किया मैंने माया की बहुत लाठियां खाई हैं, माया ने मुझको बहुत दुख दिया है गोविंद, मदा माया दक्षिण प्रकृते सोयते साचराचरम, ये आपकी जो माया देवी, इसने कम लाठियां तो नहीं मारी, बहुत लाठियां मारी, जब जब मैंने अपनी इच्छाओं को बलवान किया, जब जब मैंने अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने का प्रयास किया, इसने मुझको बहुत पीटा है, अब ये गलती मैं दोबारा नहीं करूंगा, अब जो तेरी इच्छा है गोविंद वही मेरी इच्छा है, अब मुझको आप शक्ति दो। और मैं अपने प्रयास से आपको अपने मन निष्कृष्ट मन में बिठा भी नहीं सकता, लेकिन अगर आप कृपा करें तो गोविंद आप तो कहीं भी जा सकते हो, आप तो किसी स्थान पे भी रह सकते हो, मैं तो अपने प्रयास से आपको भुला भी नहीं सकता। तो जब कामनाओं को हम परिवर्तित कर देते हैं, जब कामनाओं का शुद्धिकरण हो जाता है, जब भगवान की इच्छाओं को जब हम स्वीकार कर लेते हैं, तब क्रोध नहीं आएगा, फिर रूप बदल जाएगा, फिर काम नहीं, फिर क्रोध नहीं, फिर लोभ नहीं, फिर मोह नहीं, फिर मद नहीं, फिर मत्सर नहीं, सब रूप ही बदल जाएगा। ये काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर तब तक है जब तक मैंने अपनी पहचान अपने शरीर से और अपने मन से कर रखी है। जब मैं मन को भोक्ता बनाता हूं, जब मैं मन को बलवान बनाता हूं, तभी तक ये सारे दोष हैं, तभी तक ये मन हमारा शत्रु है, तभी तक हमारा मन शत्रु बना रहता है। तो इसलिए ये बहुत ही मुख्य बात है कि हम मन के साथ किस प्रकार का व्यवहार करें, मन को किस प्रकार से इसको प्रेरित करें। तो भगवान श्री कृष्ण ने हमारे को तीन बातें बताई हैं, और क्या बताया है कि हम जो भी कार्य करते हैं, या तो शरीर से करते हैं, या वाणी से करते हैं, या मन से करते हैं। अब शरीर से कार्य कौन से होने चाहिए, वाणी से कौन से होने चाहिए, और मन से कौन से होने चाहिए, इन कार्यों को हमें देखना चाहिए। लेकिन एक बात है, जब कलयुग का प्रारंभ हो रहा था और परीक्षित महाराज कलयुग को ठहरने नहीं दे रहे थे, कलेर दोषा निधे राजन अस्ति ही एको महान गुना कीर्तनाद एव कृष्णस्य मुक्त संग परम व्रजे, कि कलयुग में ठीक है बहुत दोष हैं, बहुत अवगुण हैं, लेकिन एक गुण तो है कीर्तनाद एव कृष्णस्य मुक्त संग परम व्रजे, कि भगवान का हरि नाम का कीर्तन करने से सब दोषों से छुटकारा मिल जाता है। तो कलयुग में एक विशेष हमारे को, जिसे कहते हैं कि एक हमारे को उपलब्धि ये है कि आप शरीर से कर्म करेंगे कर्म बंधन होगा, आप वाणी से कर्म करेंगे कर्म बंधन होगा। कर्म का मतलब भौतिक कर्म, लेकिन अगर आप मन से कर्म करते हैं तो कलयुग में ये आपको विशेष छूट दी गई है, जब तक आप उस मानसिक कार्य से कोई अगर पापपूर्ण कार्य करते हैं तो वो आपको कर्मबंधन नहीं होगा। और संसार में सारे लोग रात दिन मानसिक रूप से पाप कार्य करते ही रहते हैं, मानसिक रूप से पाप कार्य करते हैं, लेकिन अगर मानसिक रूप से आप कोई भक्ति करते हैं, पुण्य कार्य करते हैं, तो उसका फल हमको मिलता है। ये तो हम अपने मन को कैसे बनाए। तो एक एक भगवान का एक भक्त था, बड़ा कंजूस था, कंजूस था। तो वो एक दफा एक महात्मा के पास, संत के पास गए और बोले, देखो ऐसा है, मैं भक्ति तो करना चाहता हूं लेकिन मैं कुछ खर्च नहीं करना चाहता, क्या हम जैसे लोगों के लिए कोई उपाय है? संत ने कहा, तुमको कौन कहता है खर्च करने को, कोई आए थे इस्कॉन वाले तुम्हारे पास पैसा मांगने? बोले, नहीं कोई नहीं आया। तो फिर क्या परेशानी है, तुम अपना धन अपने पास रखो, जब जाओगे तो साथ में लेके जाना। बोले, नहीं नहीं वो बात नहीं है, लेकिन अब क्या करूं, मन के वशीभूत हूं, है ना। उसने अपनी बात को सामने रख दिया, मैं वन के वशीभूत हूं, धन तो है मेरे पास लेकिन मैं धन खर्च नहीं करना चाहता, मन करता ही नहीं खर्च करने का, लगता है इसको रखे रखूं। तो मैं क्या करूं, मेरे को कुछ ऐसा उपाय बता दो कि भक्ति मैं भी कर दूं। बोले हाँ, तुम्हारे लिए भी उपाय है, ठाकुर जी ने सबके लिए इस कलयुग में तो उपाय ही उपाय है। बोले क्या उपाय है? बोले आप ऐसा करो, आप ठाकुर जी को सोने के सिंहासन पर विराजमान, सोने के सिंहासन पर मैं विराजमान। अरे भाई, आपको कौन कह रहा है सोने का सिंहासन लाने के लिए? मन से एक सोने का सिंहासन बना लो। मन से बनाने में क्या जा रहा है आपका? सोने के सिंहासन में मन में विराजमान कर दो, मन से विराजमान करने के बाद फिर बोले ठाकुर जी को बड़े सुंदर सुंदर व्यंजन, बड़े सुंदर खीर प्रसाद, ये वो जितने भी व्यंजन आप सोच सकते हो वो उनको अर्पण कर दो। अच्छा, ऐसा हो सकता है क्या? मन से अर्पण करने से भगवान स्वीकार करते हैं? बोले हाँ, बिल्कुल स्वीकार करते हैं, और उसका उतना ही फल मिलता है जितना कोई व्यक्ति कुछ वस्तु को लेकर के खरीद करके करता है। अच्छा, ऐसा होता है? बोले हाँ, ऐसा होता है, तो शास्त्र प्रमाण है। ठीक है, तो वो था तो कंजूस। अब उसने कहा चलो ठीक है, सोने सिंहासन का उसने जो है वो बनाया और भगवान को मानसिक रूप से भगवान को उस पर स्थापित किया और भगवान की बहुत पूजा अर्चना करो। अच्छा, जो भगवान को आज जो है काजू किशमिश की ये वो सब खीर बना के खिलाते हैं, खूब अच्छे अच्छे व्यंजन डालूंगा। तो जब वो खीर बनाने लगा तो खीर बनाते बनाते जब वो शक्कर डाल रहा था तो उसने शक्कर जो है वो थोड़ी कम कर दी। बोले ज्यादा जा रही है, मन से कर रहा है लेकिन स्वभाव ऐसा है कि मन से भी वो शक्कर बचा रहा है। अब ये देख करके तो ठाकुर जी बड़े मुस्कुराए और उन्होंने आके उसका हाथ पकड़ लिया। अरे मन से डाल रहा है, उसमें भी बचा रहा है, ये तो पूरी डाल दे। जैसे ही ठाकुर जी ने उसका हाथ पकड़ा, उसने कहा गोविंद अब मेरा हाथ मत छोड़, अब आपने मेरा हाथ पकड़ लिया है तो अब मेरे हाथ को मत छोड़ना, क्योंकि मैं तो जड़ बुद्धि हूं, मैं मलिन हूं। तो इस तरीके से एक चंडीदास थे, चंडीदास का नाम आपने सुना, वो भगवान वो चंडी देवी के भक्त थे, चंडी देवी की पूजा किया करते थे, अर्चना किया करते थे, और साथ में ही उनका एक भाई भी रहता था जो वैष्णव था, भगवान की पूजा अर्चना करता था। लेकिन चंडीदास जो थे वो थोड़े भौतिक संपत्ति के है ना उनके पास थी, उनके पास बहुत बड़ा एक सुंदर बगीचा था जिसमें तरह तरह के पुष्प खिला करते थे, और चंडीदास उन पुष्पों को लेकर के वो चंडी देवी को अर्पण किया करते थे। तो एक बार जब उनके भाई ने देखा एक सुंदर फूल खिल रहा है उनके बगीचे में, तो उनकी इच्छा हुई कि ये मैं अपने ठाकुर जी को, मैं राधा श्याम सुंदर को ये पुष्प किसी तरीके से मुझको मिल जाए तो मैं अर्पण कर दूं। लेकिन भाई, दोनों भाइयों में आपस में ज़्यादा कुछ मित्रता नहीं थी या दोनों, तो अब ये चिंतन करते करते जो चंडीदास के भाई थे उन्होंने एक विशेष पुष्प को चुना और भगवान को मन से अर्पित कर दिया। पुष्प वहीं का वहीं है लेकिन उसको मन से अर्पित कर दिया और भगवान ने उस पुष्प को स्वीकार किया। लेकिन कुछ समय के बाद उसी पुष्प को चंडीदास ने तोड़ा और चंडी देवी को अर्पण कर दिया, जो पुष्प भगवान को अर्पित उनके भाई कर चुके थे। जब उनके भाई ने वो पुष्प अर्पण किया तो चंडी देवी साक्षात प्रकट हो गई। बोली मैं आज तुमसे बहुत प्रसन्न हूं। प्रसन्न है, क्या कारण है? आज आपने मेरे को प्रसन्न कर दिया, आपने आज मेरे को गोविंद का प्रसाद पुष्प प्रसाद मेरे को जो है अर्पण किया है, गोविंद का प्रसाद पुष्प प्रसाद अर्पण किया है। मैं तो जैसे नित्य प्रति बगीचे से मैं चयन करके लाता था वैसे ही मैंने आपको अर्पण किया था, नहीं ये पुष्प आज मेरे गोविंद को अर्पण हुआ था, वो तुम्हारे भाई के द्वारा अर्पण हुआ था और तुमने उसी पुष्प को मेरे को अर्पित किया है, तो आज मैं प्रसन्न। तो देखिए मानसिक रूप से की गई सेवाएं भगवान स्वीकार करते हैं। मानसिक रूप से खीर बनाई गई थी और भक्त की उंगली जल गई थी, कथा आप लोगों को मालूम होगी। तो मन का कितना बड़ा कार्य है हमारे जीवन में। आज हम जो ये सब कार्य कर रहे हैं, आज आप दिन प्रतिदिन आते हैं, ये कार्य आपका कभी निष्फल नहीं जाएगा, क्योंकि ये मन में हमारे ये डिपॉजिट होता जा रहा है। ये आज के कार्यकलाप, ये ब्लैक, जैसे एरोप्लेन में ब्लैक बॉक्स होता है, यार जानते हैं कभी कोई एरोप्लेन जब क्रैश हो जाता है तो सबसे पहले क्या किया जाता है, ब्लैक बॉक्स की रिकॉर्डिंग देखी जाती है कि इसमें क्या क्या वार्तालाप हुई थी, पायलट की को पायलट की आपस में क्या वार्तालाप हुई थी, उनसे क्या बातचीत हुई थी, वो सब रिकॉर्डिंग ब्लैक बॉक्स में रहता। और ये माइंड क्या है, ये ब्लैक बॉक्स है। इसीलिए तो भगवान कहते हैं कि ये काली वस्तु है, ये काले को ही दे दो भाई, ये काले को ही दे दो। तो इसी तरीके से ये जो रिकॉर्डिंग आज जो चल रही है ये ब्लैक बॉक्स में जा रही है, और जीवन के अंत काल में यही ब्लैक बॉक्स आपको कहां ले जाएगा, गोलोक धाम ले जाएगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये जो मन है इसको शत्रु नहीं हमको मित्र बनाना है, और इसके सहायता से हमें अपना उद्धार करना है। तो श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय।